उस दिन रविवार की शाम के बाद श्यामली को रिया और कृति से ठीक से बात करने का समय नहीं मिला था। वो काफी बिजी थी। आज कई दिनों बाद तीनों फुर्सत में थी और आपस में बैठी हुई थी। सानवी रिया को बताते हुए बोली, पता है वो आदमी जिसे हमने ब्रेसलेट के पैसे दिए थे वो कौन है? पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, रिया ने हैरानी से कहा। वो वही आदमी है जिसके घर में काम करती हूँ, आर्यन राजवंश। क्या? रिया लगभग चौंकते हुए बोली, और तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हुई पता है? जब मुझे पता चला कि वो आर्यन है, मैंने मना किया था कि तुम उस दिन उससे पैसे मत लो, अगर तुम पैसे ना लेती तो मेरी बेइज्जती नहीं होती। रिया और कृति दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान रह गईं। क्या नाम बताया था तुमने? रिया ने पूछा। आर्यन राजवंश। रिया ने तुरंत फोन उठाया और आर्यन राजवंश का नाम सर्च करने लगी। तुम भी क्या कर रही हो श्यामली? सानवी ने हंसते हुए कहा। जरा पता तो चले कौन है वो जिसके घर तुम काम करती हो, रिया बोली। कृति भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी ही देर में आर्यन की ढेर सारी तस्वीरें सामने आ गईं। कितना हैंडसम है, रिया उत्साहित होकर बोली। सचमुच, कृति ने भी तस्वीरें देखते हुए हामी भरी। अब तुम बताओ, हैंडसम तो वो है ना, रिया ने साध्वी से पूछा। अगर वो हैंडसम है तो मैं क्या करूं, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। अच्छा रिया, देखो उसके बारे में और क्या जानकारी है, कृति ने कहा। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, शायद वो आदमी अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखना पसंद करता है, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि वो इस देश के गिने चुने अमीर लोगों में से एक है, रिया ने बताया। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे अमीर हो या बहुत अमीर, मुझे तो वही काम करना है, सानवी ने हंसते हुए कहा। एक बात तो पक्की है, वो बैचलर है, रिया ने कहा, क्योंकि अगर उसकी फैमिली होती तो उनके साथ रहती। अब सानवी तो रोज उसके घर जाती है और वहां तो कोई नहीं है। तुम और तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर अपने बेडरूम में सोने चली गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। आर्यन और सानवी की फिर से मुलाकात नहीं हुई। उस शाम सानवी खाना तैयार कर रही थी जब जय भागत किचन में आया। हेलो सानवी दीदी, उसने कहा। अरे तुम कैसे हो, सानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके पीछे पीछे राम भी आ गया। असल में अनन्या मैडम बाहर गई हैं, उन्हें रात को एक शादी में जाना था तो उन्होंने जय को यहाँ भेज दिया, राम ने बताया। ये तो अच्छा हुआ मैं तुमसे मिल पाई, सानवी ने हंसते हुए कहा। उसकी जय से अच्छी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। तो आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं, जय ने धीरे से पूछा। हाँ हाँ बताओ क्या बात है, सानवी बोली। असल में जब तक आर्यन सर नहीं आ जाते क्या आप तब तक रुक सकती हैं, मुझे थोड़ा काम है और मुझे लगता है कि आर्यन सर जल्दी ही आ जाएंगे, उन्हें इसके बारे में पता ही होगा। श्यामली पहले तो सोच में पड़ गई, फिर बोली, चलो कोई बात नहीं मैं रुक जाती हूँ। राम ये सुनकर मुस्कुराया और उन्हें छोड़कर चला गया। जय हाल में बैठकर लैपटॉप पर कोई गेम खेलने लगा था। सानवी का थोड़ा सा ही काम बाकी था और जैसे ही उसने काम पूरा किया वो जय के पास आकर बोली, चलो हम कोई और गेम खेलते हैं, ऐसे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। जय ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा, ठीक है तो हम लोग छुपा छुपी खेलेंगे। ये सुनते ही वो अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया। दोनों ने छुपा छुपी का खेल शुरू कर दिया। कभी श्यामली छोटे के पीछे दौड़ती तो कभी जय तेजी से भागकर सोफे के पीछे छिप जाता। कभी हंसी के ठहाके गूंजते तो कभी एकदम चुप्पी छा जाती, जैसे दोनों सचमुच एक दूसरे को ढूंढने में जुटे हों। खेलते खेलते उनका जोश बढ़ता गया और लिविंग रूम का हाल काफी बिगड़ गया। कुशन इधर उधर बिखरे, टेबल थोड़ा खिसका हुआ और फर्श पर खिलौने बिखरे पड़े थे। समय पर नजर डालते हुए श्यामली को अचानक ख्याल आया, अरे आर्यन मामू के आने का टाइम होने ही वाला है, चलो सब ठीक कर देते हैं वरना बहुत डांट पड़ेगी। जय ने तुरंत हामी भरी, दीदी आप सही कह रही हो। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी पूरा लिविंग रूम ठीक किया, कुशन अपनी जगह पर, टेबल सीधा और खिलौने टोकरी में। सब कुछ ठीक करने के बाद जय ने उत्साहित होकर कहा, चलो अब हम लॉन में चलते हैं। दोनों बाहर लॉन में आ गए। जय ने आइडिया दिया, हम लोग घर बनाकर खेलेंगे। श्यामली ने मुस्कुराकर कहा, मुझे को घर बनाना आता है तो फिर बनाते हैं ना। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, उसने लॉन के कोने में पड़ी पुरानी छतरी उठाई। वहीं पड़े सोफों और कुर्सियों को उसने इस तरह सजाया कि चारों तरफ दीवारें बन गई। ऊपर से छतरी को डालकर उन्होंने छत तैयार कर दी और एक तरफ से खिलौनों के डिब्बे रखकर दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घर तैयार हो गया। अब दोनों उस घर के अंदर बैठ गए। जय अपने टॉय कार्स निकाल लाया और श्यामली गुड़ियों से खेलते खेलते कहानी सुनाने लगी। कभी वे घर के अंदर चाय पार्टी करते, कभी काल्पनिक मेहमान बुलाते। दोनों के चेहरे पर बच्चे जैसी मासूम खुशी थी और समय का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं रहा। तभी गेट के बाहर से एक कार आकर रुकी। ये आर्यन राजवंश था जो अपनी गाड़ी अंदर पार्क करते हुए सीधे लॉन की तरफ बढ़ा। उसकी नजर तुरंत उस कोने पर पड़ी जहां सोफे अजीब से तरीके से एक साथ लगाए गए थे और ऊपर छतरी रखी थी। अंदर से हल्की हल्की खिलखिलाहट और बातचीत की आवाज आ रही थी। वो पास गया, हल्के से मुस्कुराया और आगे से पर्दा हटाकर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गया। श्यामली और जय अपने घर में बैठकर खेल रहे थे। मामू, जय खुशी से चिल्लाया और तुरंत बाहर आकर आर्यन की गोद में कूद गया। आर्यन ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया, माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया और बोला, देखो बेटा, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो गए हैं, चलो पहले इन्हें अच्छे से वॉश करो। जय ने सिर हिलाया और हाथ धोने के लिए अंदर की ओर भागा, जबकि श्यामली अभी भी हंसते हुए अपने बनाए छोटे से घर को देख रही थी, मानो अभी खेल खत्म करने का उसका मन ही ना हो। जैसे ही जय अंदर गया, आर्यन के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। वो जो अभी कुछ पल पहले मुस्कुरा रहा था, अब काफी गंभीर हो गया। उसने एक तीखी नजर श्यामली पर डाली जो उसके पास खड़ी थी और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा काम घर को साफ रखना है और तुमने तो पूरा घर बिखेर कर रख दिया, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। उसकी आवाज में सख्ती साफ छलक रही थी। जय जो अभी अभी हाल में पहुंचा ही था, ये सुनते ही रुक गया। उसके कानों में अपने मामू की आवाज पड़ी और उसने देखा कि मामू उसकी दोस्त श्यामली को डांट रहे थे। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो ने धीमे स्वर में कहा, सॉरी, और वो क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आया। आर्यन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हें बात समझ आ गई होगी। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। जय भी हाल से किचन में आया और श्यामली के पास पहुंचा। उसने श्यामली के हाथ को पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, आप उदास हो गई ना, मामू ने आपको डांटा मेरी वजह से। शानवी उसके बराबर घुटनों के बल बैठ गई और हल्की सी मुस्कान देते हुए बोली, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी भर आई थी, क्योंकि जिस लहजे में आर्यन ने उससे बात की थी वो सचमुच बहुत सख्त था। जय ने धीरे से कहा, वैसे मेरे मामू बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं कभी कभी उन्हें क्या हो जाता है। वो बच्चों जैसी कोशिश कर रहा था कि श्यामली का मूड अच्छा हो जाए। तभी आर्यन राजवंश भी उन लोगों के पास किचन में आता है। उसने जय को श्यामली गले लगे हुए देख लिया था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आर्यन नीचे से कहा। क्या? आर्यन राजवंश ने बाहर लॉन की तरफ इशारा किया। कहाँ है मामू जान? जय ने खड़े खड़े पूछा। जय भागता हुआ बाहर चला गया। क्या आर्यन राजवंश और श्यामली का रिश्ता कभी कम्फर्टेबल हो पाएगा? क्या भी एक दूसरे के साथ प्यार करना सीख पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो रेटिंग दें और मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना ना भूलें।